भाग दो, सुसंदेश, अध्याय सात। सुसंदेश क्या है? इस समय ऐसा प्रश्न पूछना विचित्र लगता है। हमने बाइबल की कहानी को देखने में, यानी कि परमेश्वर कैसे हमें उनके परिवार के सदस्य बनाना चाहते हैं, उसे देखने में बहुत समय व्यतीत किया है। हम सुसंदेश पर विश्वास करके उस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। मैंने देखा है कि कलीसिया में भाग लेने वाले अधिकांश लोग सुसंदेश को वास्तविक रीति से समझे नहीं है। कुछ लोग तो इसे स्पष्ट नहीं कर सकते, दूसरे कुछ लोग उसे सुसंगत बता तो सकते हैं, पर कई बार उसकी सरलता को सही अर्थ में समर्पित करने में संघर्ष करते हैं। वे आंतरिक रीति से इस बात के लिए दुख सहन कर रहे हैं कि अनंत जीवन के लिए सुसंदेश पर विश्वास करना जरूरी है। आप में से अधिकांश लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि जब मैं मेरे कहने का तात्पर्य समझाऊंगा, तब आप अपने आप को और दूसरे कोई भी व्यक्ति को नीचे बताई बात के जैसे देखोगे। आइए हम सुसंदेश की व्याख्या से शुरुआत करते हैं। स्पष्टीकरण के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सुसंदेश क्या नहीं है उसके विषय में भी बात करेंगे। जब हम बात के उस भाग में जाएंगे, तब आप देखोगे कि मैंने जो संघर्ष की बात की है उसका अर्थ क्या है। सुसंदेश क्या है? सुसंदेश शब्द की व्याख्या करना सरल है। बाइबिल में बताया गया सुसंदेश शब्द उद्धार के संदेश को बताता है। सुसंदेश शब्द तो नए नियम की मूल भाषा के यूनानी शब्द का अनुवाद है, जो अच्छे संदेश लाने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को जो प्रतिफल मिलता है उसे बताता है। इसलिए कई बार आप सुसंदेश शब्द के बदले अच्छा संदेश ऐसे शब्द भी सुने होंगे, यानी कि उद्धार के संदेश का अच्छा संदेश। आइए हम उसके विषय में विचार करें। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ सीखे हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि हम कुछ सीखे हैं, पर वास्तव में हमें यह जानने की जरूरत थी वो हम नहीं सीखे हैं। यह अच्छा है कि अब हम इस शब्द का अर्थ कर सकते हैं, पर वास्तव में तो हमने अभी भी उद्धार के संदेश में समाविष्ट हुई बातों के विषय में बात ही नहीं की है। हमने तो सुसंदेश शब्द का अर्थ बताया, पर सुसंदेश वास्तव में क्या है यह नहीं बताया है। तो आइए सुसंदेश के अर्थ के विषय में बात करते हैं। परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है उसमें क्या सम्मिलित है? अच्छे संदेश का विवरण क्या है और क्यों वो अच्छा संदेश है? नए नियम में 100 बार यह शब्द उपयोग में लिया गया है, इससे हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। शायद पौलुस प्रेरित सुसंदेश के संदेश के विषय में नए नियम के दूसरे लेखकों से ज्यादा बात करता है। उसने यीशु का जो संदेश दिया, वो संदेश के लिए पौलुस सुसंदेश शब्द का प्रयोग करता है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसंदेश बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों 15:1-4। पौलुस शास्त्र के दूसरे एक परिच्छेद में उसके संदेश के विषय में सुसंदेश शब्द का प्रयोग करता है। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसंदेश के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सभी जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। रोमियों 1:1-5। शास्त्र के इस परिच्छेद में सुसंदेश, यानी कि अच्छे संदेश में जो बातें सम्मिलित है, उसे स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। इसमें सम्मिलित बातें इस प्रकार हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वो दाऊद के वंश में जन्मा, उसका नाम यीशु है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, उसे गाड़ा गया, वो मृत्यु में से जी उठा। ये सारी बातें अच्छे संदेश का विषयार्थ है। आगे हमने जो बात की उसके बड़े चित्र के प्रकाश में मैं इसे फिर से समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बना, हमारे पाप हमें परमेश्वर के परिवार से बाहर न रख सके, इसलिए उसने दुख सहा और क्रूस पर मर गया। हम भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करें और उसके और हमारे पिता जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर है उनके साथ सदाकाल रहें, इसलिए वो मृत्यु में से जी उठा। आइए इसकी थोड़ी परख करते हैं। अगर ये अच्छा संदेश है तो क्यों अच्छा है? इसके बहुत कारण है। ये अच्छा संदेश है क्योंकि हमारा उद्धार हमारे कार्य के ऊपर आधारित नहीं। शास्त्र के इन परिच्छेदों में आपके अद्भुत कार्यों की सूची को नहीं देखते हैं। सुसमाचार का विषयार्थ तो आपने जो अच्छे कार्य किए हैं या तो करेंगे या तो आपको अच्छे कार्य करने की जरूरत है, उसके विषय में नहीं है। यह तो दूसरे कोई व्यक्ति ने आपके लिए जो कार्य किए हैं उसके विषय में है। यह हम सबके लिए अच्छा संदेश है क्योंकि हम में से कोई भी संपूर्ण नहीं है। हम में से कोई भी व्यक्ति हर एक समय पर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के परिवार में रहने के लिए या अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के नाम से पहचाने जाने के लिए लायक नहीं है। परमेश्वर ने हमारा स्वीकार किया है। सुसमाचार का विषयार्थ हमें बताता है कि यह कैसे होता है। ध्यान दें कि पौलुस ने लोगों को सुसमाचार देने की उसकी सेवकाएं के बारे में बात करते हुए कहा है कि विश्वास को अधीन होना। उसकी इच्छा थी कि जिन्होंने उसका संदेश सुना है वो उसकी बात में दृढ़ता से स्थिर रहें। आप किसी रीति से सुसमाचार को अधीन होते हैं? बपतिस्मा लेकर, भेंट देकर, अच्छा बर्ताव करके, मूर्खतापूर्वक वर्तन न करके, गरीबों को मदद करके? यह सारे कार्य अच्छे हैं, पर परमेश्वर तो विश्वास की अधीनता चाहते हैं। आप विश्वास करने के द्वारा सुसमाचार को अधीन होते हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि पौलुस ने समझ शक्ति से अधीनता की बात नहीं की है? कैसे यीशु मनुष्य बने या तो पुनरुत्थान कैसे संभव हुआ, उस बात को शायद हम पूर्ण रीति से समझ नहीं सकते। पर परमेश्वर ऐसी इच्छा नहीं रखते कि हम इस बात को पूर्ण रीति से समझें और उसके बाद उनके पास जाकर आखिरी परीक्षा दें। परमेश्वर तो ऐसी इच्छा रखते हैं कि हम विश्वास करें। क्यों ये सारी बातें तर्क से भरी हैं, इसे समझने के लिए हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। सुसमाचार का विषयार्थ तो यह है कि परमेश्वर आपको माफ करने का और सदाकाल के लिए आपको अपने परिवार में स्थान देने का प्रस्ताव रखते हैं। उनका प्रस्ताव उनके प्रेम और दयालुता को दर्शाता है। बाइबल कई बार उन शब्दों के बदले अनुग्रह शब्द का प्रयोग करता है। कोई परमेश्वर से बड़ा नहीं है, इसलिए परमेश्वर इस प्रस्ताव का स्वीकार करने का दबाव नहीं डालते हैं। कोई उनके हाथ को मोड़ नहीं सकता है। परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए वो आपको उद्धार का प्रस्ताव देते हैं। परमेश्वर सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप विश्वास करें। यह सुसमाचार का अच्छा संदेश है। क्यों हमें सुसमाचार की जरूरत है? आप शायद ऐसा सोचेंगे कि मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। हाँ, पर दूसरी रीति से, पर मसीही समुदाय में मेरे अनुभव के प्रकाश में कहूं तो मुझे थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होने की जरूरत है। क्यों हमें सुसमाचार की जरूरत है? क्योंकि सुसमाचार के बिना परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की हमें कोई आशा नहीं। पाप की वजह से हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। सुसमाचार पर विश्वास करना ही इस समस्या का उपाय है। बाइबिल हमारी दुर्दशा को विविध रीति से बताता है। यीशु ने कहा कि वे खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। लूका 19:10। हम हमारे पापों में और अपराधों में मरे हुए थे। इफिसियों 2:1-5 और भक्तिहीन है। रोमियों 5:6। हम परमेश्वर से अलग एफिसियों 4:18 और निकाले हुए कुलुस्सियों 1:21 थे, क्योंकि हम परमेश्वर के बैरी रोमियों 5:10 थे। यह अच्छा चित्र नहीं है। हमने बाइबल की जो बात देखी वो हमें बताती है कि क्यों हम ऐसे हैं। हम परमेश्वर के परिवार में जन्मे नहीं है, हम तो बाहर से हैं। फिर भी परमेश्वर हमें अपने परिवार के सदस्य बनाना चाहते हैं। परमेश्वर के स्वभाव की कमी की वजह से हमें जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए हम हमारी बुद्धि और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में दूसरों का नुकसान करते हैं। हम आत्मविनाश के मार्ग में जी रहे हैं। जब हम परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करते और उनके नियमों को तोड़ते हैं और जब उसे तोड़ मरोड़ देते हैं या तो किसी का दुरुपयोग करते हैं, तब हम पाप करते हैं। हम हमारे स्वभाव से पापी, स्वकेंद्रित और विद्रोही हैं, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23। यह पढ़कर गुस्सा होना सरल है, पर सुसमाचार की बात में अच्छा संदेश तो यह है कि परमेश्वर सब जानते थे, फिर भी हमें प्रेम करते हैं। एक कारण की वजह से यह उपयोगी भी है, क्योंकि सुसमाचार की यह बात उसे उद्धार के विषय में दूसरे धर्मों की शिक्षाओं से पूर्ण रीति से अलग बनाती है। दूसरे धर्म पाप का इनकार करते हैं, या तो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के कार्य, बार बार की जाने वाली धार्मिक विधियां, प्रार्थनाएं, धार्मिक दिनों का पालन करना या तो और कोई रीति से अच्छा बनना इस समस्या का उपाय है। स्पष्ट रीति से कहूं तो सिर्फ सुसमाचार ही मनुष्य की परिस्थिति और अच्छे कार्य करने की अयोग्यता की समस्या का उपाय है। उसके सामने दूसरे धर्म आपको झूठ बताते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर से अलग होने की समस्या का उपाय ही नहीं, या तो फिर आपको कोई समस्या ही नहीं। सिर्फ सुसमाचार ही एक ऐसा सत्य है जो आपको कहता है कि परमेश्वर को समस्या का उपाय करना था, और उन्होंने ऐसा किया भी। सुसमाचार पारदर्शक रूप से ईमानदार है। आपको दुख लगे फिर भी वो आपको सत्य बताता है, वो प्रेम बताता है। आपको झूठ कहना प्रेम नहीं है। क्या उद्धार प्राप्त करने के दूसरे कोई मार्ग है? मैंने अभी आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, पर इस प्रश्न को दूसरे दृष्टिकोण से बताना चाहता हूं। परमेश्वर मुफ्त में माफी, उद्धार और उनके साथ अनंत जीवन देते हैं। उसके लिए हम लायक नहीं और उसे कमा नहीं सकते। वास्तव में तो उसे कमाया नहीं जा सकता और उसके लिए लायक भी नहीं बना जा सकता। उसके लिए विश्वास करने की जरूरत है, या तो परमेश्वर के वचन पर और यीशु ने किए हुए संपूर्ण कार्यों पर विश्वास करने की जरूरत है। सुसमाचार पर विश्वास करने का अर्थ उद्धार के विषय में दूसरी शिक्षाओं या कल्पनाओं पर विश्वास करना नहीं है। बाइबिल बताता है कि उद्धार के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं। उसके विषय में विचार करो। अगर आपके लिए स्वर्ग में जाने का दूसरा कोई मार्ग होता, तो क्यों परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को ऐसी भयंकर रीति से मरने के लिए भेज देते? पुत्र को मनुष्य बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करना था। उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना ही सिर्फ एकमात्र मार्ग था। यीशु के बगैर कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं दे सकता। प्रेरितों के काम 4:12। यीशु ने खुद स्पष्ट रीति से कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। इसमें कोई अस्पष्टता नहीं। यीशु ने जो कार्य किया है, उसके बगैर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के परिवार का सदस्य नहीं बन सकता। आप दूसरे विश्वास के साथ सुसमाचार को जोड़ नहीं सकते। सुसमाचार अद्वितीय है। सुसमाचार पर विश्वास करने का अर्थ है दूसरे विश्वास से पश्चाताप करना। यह तो बाइबल जिसे मन फिराना कहता है, उसका एक पहलू है। दूसरे पहलू भी है, पर उसे हमारी बातचीत के दूसरे भाग में अच्छी रीति से समझाए गए हैं। सुसमाचार क्या नहीं है? सुसमाचार के विषयार्थ के विषय में हमने जो चर्चा की, उसमें एक बात स्पष्ट हुई है कि यीशु ने हमारे लिए जो संपूर्ण कार्य किया है, वो सुसमाचार है। जो लोग यीशु ने हमारे बदले में किए गए कार्य पर भरोसा करते हैं, उन्हें अनंत जीवन और उद्धार भेंट के स्वरूप में दिए जाते हैं। हमारी संस्कृति इस स्पष्टता को भ्रांति में डालने का प्रयत्न करती है। वो आत्म सुधार को और अस्पष्ट आत्मिकता को उसका पर्याय बनाती है। पर सुसमाचार की बाइबल के अनुसार जो व्याख्या है, वो ऐसी बातों का विरोध करती है। सुसमाचार और उद्धार को व्यक्तिगत प्रकाश, यानी कि अपने अंदर दृष्टि करने से या आत्मखोज की यात्रा के साथ कोई संबंध नहीं। विविधात्मिक विचारों की खोज करना सुसमाचार नहीं। यह सब तो बौद्धिक या मानसिक प्रयत्न या तो कार्य प्रवृत्तियां हैं, वो सुसमाचार नहीं। पर ऐसे वैकल्पिक सुसमाचारों की शोध करना या उसे दूर करना सरल है। परमेश्वर जो उद्धार देते हैं, उसकी सरलता पर आधार रखने में अधिकांश लोगों को ज्यादा बाधारूप बनने वाली बात भी है। मैंने पहले बताया है कि कलिसिया में जाने वाले अधिकांश लोग सुसमाचार के विषय में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वे कार्य करने के फंदे में फंसे हुए हैं। आप या आप जिसे जानते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति सुसमाचार शब्द की व्याख्या या शायद उसके अर्थ में जो विषयार्थ है उसकी व्याख्या कर पाएगा, पर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु ने आपके लिए जो कार्य किया है उस पर विश्वास करना जरूरी है, यह विचार योग्य नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है कि उसके लायक बनने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम कैसे उसके लायक बनेंगे? अगर आप बाइबल की बात को और सुसमाचार के विषयार्थ को समझे तो आप तुरंत ही जान सकोगे कि परमेश्वर हमें जो देते हैं उसके लिए हम लायक नहीं है। यही बात बहुत लोगों के लिए संघर्ष का कारण है। हम ऐसा अनुभव करना चाहते हैं कि हमारे पास जो अच्छी बातें हैं वो हमने खुद कमाई हैं। हम दान प्राप्त करना नहीं चाहते। कोई भी कार्य किए बगैर कोई अच्छी बात प्राप्त करनी हमें गलत लगती है। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई न कोई कार्य तो करना ही चाहिए। अपराध भाव रहस्यमय रीति से हमारे विचारों को विकृत कर देता है। वो सुसमाचार को बिना शर्त की भेंट के जैसे देखने की हमारी योग्यता को गतिहीन बनाता है। अपराध भाव कुछ लोगों को इस बात का समर्थन करने में ले जाता है कि भेंट देने वाले व्यक्ति के लिए उन्होंने कोई कार्य किया है, इसलिए वे उस भेंट के लायक है। अगर वे खुद को इस बात के साथ सहमत नहीं कर सकते तो वे उस भेंट के लिए लायक होने का अनुभव करने के लिए कोई कार्य करने का इरादा करते हैं। अपराध भाव हमें सुसमाचार में परमेश्वर ने बताए हुए प्रेम के प्रति अंधा कर देता है। कोई आपके मूल्य के लिए विचार करे, इसलिए मेहनत करने के द्वारा आप खुद पर ध्यान देते हैं। जब आपका हेतु कोई व्यक्ति को आपके लिए ऐसा विचार करवाने का है कि आप उनके प्रेम और लक्ष्य के लायक हैं, तब आपके खुद के सिवा दूसरी किसी भी व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे सकते। हम हमारे खुद के लिए अच्छा अनुभव करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, हम ऐसा अनुभव करना चाहते हैं कि हम कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए लायक हैं, जिससे हम ऐसी कोई भी वस्तु नहीं ले रहे हैं जो हमारी नहीं है। हम दूसरों को भी हमारे जैसा अनुभव करवाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, हम उनको ऐसा अनुभव करवाते हैं कि हमारे साथ उस अनुभव की वजह से वे हमें कुछ दें। सुसमाचार इस विचार को दूर कर देता है। वो स्पष्ट नम्रता के साथ हमें उजागर करता है। वो हमें हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर और यीशु पर ही रखने का आग्रह करता है। इसलिए अधिकांश लोगों को इस बात का स्वीकार करना कठिन लगता है, क्योंकि सुसमाचार हमें हमारे कार्यों का कोई भी अभिमान नहीं करने देता। तो हमें यह समझ प्राप्त होती है कि सुसमाचार आपके कार्यों की चिंता नहीं रखता, पर आप पहले से ही जो हो उसकी चिंता रखता है। आप मनुष्य हो, आप शुरुआत से परमेश्वर के प्रेम और योजना का पदार्थ हो। इसमें कार्य दिखाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इस पतित जगत में जीने वाले पापियों के जैसे हम ऐसी सोच में बंध गए हैं कि अगर कोई हमें आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी रीति से जानेंगे तो वे हमें प्रेम नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हम पर से उनका ध्यान हटा सके, ऐसा कुछ भी नहीं। परमेश्वर हर एक विचार, शब्द, इरादा और कार्य को जानते हैं। हम में जो अपराध भाव और शर्त के साथ संबंधों की सामान्यता, हमें सुसमाचार में परमेश्वर का बिना शर्त वाला जो प्रेम है उसका स्वीकार करने में बाधा रूप बनता है। हम हमारे खुद के दृष्टिकोण को नहीं समझ सकते। इस समय मुझे कहना चाहिए कि मेरा ऐसा सूचन नहीं है कि जो लोग सच्चे सुसमाचार को सुनकर गंभीरता के साथ उन पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार नहीं हुआ है। मैं ईमानदारी पूर्वक मानता हूं कि वे विश्वास करते हैं और परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। पर मैं तो अधिकांश विश्वासी अब भी जो निराशाजनक जीवन जी रहे हैं उसका वर्णन कर रहा हूं। उनमें जो अपराध भाव है उसकी वजह से सुसमाचार का प्रेम और अनुग्रह कार्य पर केंद्रित और योग्यता पर आधारित अनुभव में रूपांतरित हुए हैं। उन्होंने ऐसा विचार करने की शुरुआत की है कि जब वे सुसमाचार को समझे और उस पर विश्वास किया, तब परमेश्वर ने जैसा प्रेम किया वैसा प्रेम अभी भी करते हैं या नहीं। वे ऐसा मानते हैं कि विश्वासी होने के बाद वे जो पाप करते हैं उसकी वजह से परमेश्वर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। वे इस बात के साथ सहमत हुए कि वे परमेश्वर की अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वे ऐसा विचार करते हैं कि उन्होंने पर्याप्त विश्वास किया है। या तो शायद उन्होंने विश्वास किया ही नहीं। दुखद बात तो यह है कि अधिकांश सच्चे मसीही भी ऐसे त्रास और पराजय से भरे हुए जीवन जीते हैं, सुसमाचार की वजह से नहीं, पर उनके अपराध भाव ने सुसमाचार की स्पष्टता को विकृत किया है उसकी वजह से। जब वे वचन पढ़ते हैं तब वे सिर्फ उनके पाप और निष्फलताओं को ही देखते हैं। हर एक संदेश एक आरोप पत्र लगता है, और जो ऐसे इरादे के साथ संदेश देते हैं ऐसे प्रचारकों को अफसोस, इससे सुसमाचार का अद्भुत आश्चर्य खो जाता है और भुला दिया जाता है। उद्धार कार्य के ऊपर आधारित नहीं, वो कभी भी कार्य पर आधारित नहीं था, कभी भी कार्य पर आधारित नहीं होगा और हो सकता भी नहीं। हम खुद को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए लायक बनाने के लिए और परमेश्वर के स्तर तक जाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम में परमेश्वर के संपूर्ण स्वभाव की कमी है। हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, पर हम परमेश्वर से कम है और परमेश्वर वो जानते हैं। इसलिए हमारी समस्या का उपाय यीशु ही है, हम नहीं। हम कोई कार्य करने के द्वारा उस खाली जगह को भर सकते हैं, ऐसा विचार वाहियात है। जब आप निष्फल होते हैं तब परमेश्वर आपके लिए कुछ नया नहीं सीखते हैं। परमेश्वर पहले से आपको जानते हैं और फिर भी आप जैसे हो वैसे आपको प्रेम करते हैं। रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आप क्या समझे, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर आपसे प्रेम रखे, इसलिए आपको कभी भी परमेश्वर के स्तर का कार्य करने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई व्यक्ति को यह विचार सिखा रहे हैं तो वो सच्चा सुसमाचार है। परमेश्वर कभी भी आपसे निराश नहीं, क्योंकि उनको आपके वर्तन के विषय में गलत अपेक्षाएं नहीं है। परमेश्वर ने शुरुआत से आपको प्रेम किया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। हम इस बात को दो विचार के साथ समझ सकते हैं, उद्धार और परमेश्वर के परिवार की सदस्यता को कमाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर वो देते हैं क्योंकि परमेश्वर कृपालु और प्रेम से भरे हुए हैं, दूसरा कोई कारण नहीं और हो सकता भी नहीं।